صلي على محمد كما أنت أهله، وخل بنا ما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. چند دنوں سے ایک کیفیت دل میں ہے، جب سے 2008 لکھنا شروع کیا کہ 2008 بھی آ گئی اور 2007 ختم، 1984 بھی یاد ہے، 1981 بھی، کہانی پچھلی بھی یاد ہے، جتنی استطاعت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، دن ڈھلتے چلے جا رہے ہیں، وہی کھانا ماں باپ کھاتے ہیں بوڑھے ہو رہے ہیں، اور وہی کھانا بچے کھاتے ہیں جوان ہو رہے ہیں، کھانا تو ایک ہی ہے، وہی پانی ماں باپ پیتے ہیں بوڑھے ہو رہے ہیں، اور وہی پانی بچے پیتے ہیں جوان ہو رہے ہیں، پانی تو ایک ہی ہے، زندگی کا دن سمٹتا چلا جا رہا ہے اور دن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، پہلے کہتے تھے سردیوں کے دن چھوٹے ہیں، اب گرمیوں کے بھی چھوٹے ہیں، برکت کی کہانی سمٹتی چلی جا رہی ہے اور برکت کی باتیں ایک داستان بن گئی ہیں، ہر آنے والا وقت بے برکتی مزید لائے گا، ہر پچھلا وقت کچھ برکت ہوگی۔ ایک اللہ والے تھے، وہ باسی روٹی کھا رہے تھے، کسی نے پوچھا تو تازہ بھی ہے، تو فرمایا اس کو کچھ برکت کا وقت ملا ہوا ہے، ہر آنے والا وقت بے برکت، ہر آنے والا وقت فتنہ ہوگا، اور صرف وہی شخص بچے گا جو اللہ جل شانہ کے ساتھ جڑ جائے اور اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکے گا۔ مومن بہت احتیاط سے دن رات گزارتا ہے، مومن بہت احتیاط سے ہر اپنے لمحات کو گزارتا ہے، تو مومن ایک چیز خوب جانتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ میرا ایک ایک بول لکھا جا رہا، میرا ایک ایک حرف لکھا جا رہا، میری ایک ایک نظر لکھی جا رہی، حتیٰ کہ میری ایک ایک سوچ جو صرف میں سوچتا ہوں، میری ماں بھی نہیں جانتی کیا سوچ رہا، میری بیوی نہیں جانتی کیا سوچ رہا، میرا رب خوب جانتا ہے کیا سوچتا ہے۔ مومن تو اپنی ایک ایک سوچ کو بھی احتیاط سے استعمال کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کوئی ایسا خفیہ کیمرہ ہے جو درج کرنے والا اسے درج کر رہا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں امریکہ میں سفر کر رہا تھا، سڑک بالکل سنسان تھی، اشارہ بند تھا، نہ ادھر سے ٹریفک نہ ادھر سے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میرا جو وہاں گاڑی چلانے والا تھا وہ وہاں کا مقامی تھا، تو اس نے گاڑی روک دی، اشارہ کھلنے کے انتظار میں رہا، تو کہنے لگے، میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی بھی نہیں ہے گاڑی کو نکال لے، کہا کہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے اور میرا نمبر نوٹ ہو جائے گا اور میرا چلان ہو جائے گا، جس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ایک طاقت دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ اللہ جل شانہ کی طاقت، جس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ایک قوت دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کی طاقت، وہ ہے اللہ کی قوت، اور اللہ جل شانہ کی جب طاقت کا 100% اعتماد آ جاتا ہے، جس چیز کا اعتماد ہوتا ہے اس چیز کی ماننا آسان، اس چیز کا ماننا آسان، اس چیز پر عمل کرنا آسان، اس چیز سے ڈرنا آسان۔ کیمرے پہ اعتماد، کیمرے کی آنکھ پہ اعتماد، تو کیمرے کی آنکھ پہ اعتماد تو کیمرے کا لحاظ کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کی قدرت والی آنکھ، اللہ پاک کی طاقت والی آنکھ، اس پہ جب اعتماد ہوگا پھر اللہ کا لحاظ کریں گے، پھر اللہ کا حیا کریں گے۔ میں اللہ پاک جل شانہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ پاک اس بندے سے حیا کو چھین لیتے ہیں، اور جب حیا بندے سے چھن جاتا ہے پھر اللہ پاک اپنی رحمت کے فرشتے اس سے ہٹا لیتے ہیں۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ وہ شخص کتنا فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے کتنی تکلیف دیتا ہے فرشتوں کو، وہ شخص فرشتوں کو کتنی تکلیف دیتا ہے جو اپنے گھر کے اندر تصویریں رکھتا ہے، کہ فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور جو فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے وہ رحمت کو اپنے دروازے کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اور جس گھر سے رحمت چلی جائے گی اس گھر کے اندر پھر عذاب باقی رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں رہتا. آپ کو عمل ڈھونڈیں. میں اس دن مختلف حدیث کی کتابیں، مختلف دینی کتابیں ڈھونڈ رہا تھا، اللہ جل شانہ کون سا ایسا عمل ہے کہ بندے کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، احادیث میں قرآن میں کہاں آیا ہے، کون سے ایسے عمل ہیں کہ قرآن و حدیث میں آیا ہو کہ اللہ جل شانہ اس بندے کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. جب میاں اپنی بیوی کو محبت سے اور بیوی اپنی خاوند کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، اس وقت بھی اللہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس وقت بھی کتنے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. میرے محترم دوستو، زندگی کے دن رات سمٹتے چلے جا رہے ہیں. حضرت جی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، کسی کے ہاں اگر سودا صرف لینے جاتے تو اپنی تھیلی جو ہے، جو پیسوں کی تھیلی ہوتی تھی، وہ اس کے سامنے رکھ دیتے، بھائی جتنے پیسے ہیں اس سے تو لے لے. وہ کہنے لگے حضرت بس اتنے بنتے آپ دے دیں. کہ بھائی جتنی دیر میں میں گنوں اتنی دیر میں میں اتنی دفعہ سبحان اللہ نہ پڑھ لوں، بس تو میری زندگی کا وقت تھوڑا ہے، مجھے پتا ہے. دیکھو جب کوئی چیز تھوڑی ہوتی ہے نا میرے دوست، جب کوئی چیز تھوڑی ہوتی ہے اس کا استعمال احتیاط سے کیا جاتا ہے. احتیاط سے آپ کو استری کی ضرورت ہے، کسی کے گھر سے لے لی، ان سے کہہ دیا ہمیں دے دیں، ہم شام تک آپ کو واپس کر دیں گے، تو کیا خیال ہے کوشش کرتے ہیں گھر کے بہت سارے کپڑے استری کر لیں، کہ پرائی چیز ہے، بیگانی چیز ہے. زندگی پرائی ہے، زندگی بیگانی ہے، زندگی اپنی ہے ہی نہیں میرے محترم دوست. یہ زندگی اپنی نہیں ہے، یہ زندگی بیگانی ہے. جب زندگی بیگانی ہے اس کے سانس بیگانے ہیں، تو اپنی ہے ہی نہیں میرے محترم دوست. تو اس کو استعمال پھر اپنی مرضی سے کیوں کریں؟ سوچے تو صحیح. ذرا آج پتہ نہیں ہم نے اپنی محبتیں کہاں کہاں رکھی ہوئی ہیں. لوہے کو مقناطیس سے محبت ہے، اور مقناطیس کو لوہے سے محبت ہے. اب لوہا صرف مقناطیس کی تلاش میں ہے، جہاں مقناطیس آئے گا لوہا اس سے چپک جائے گا. حالانکہ لوہے کے سامنے آپ زمرد رکھ دیں، عقیق رکھ دیں، سونا رکھ دیں، اور سونے سے بھی قیمتی دھاتیں ہیں، یورینیم وغیرہ، وہ رکھ دیں، چاندی رکھ دیں، تانبا رکھ دیں، وہ سونا اس کو مقناطیس جو ہے اس کو بالکل نہیں لے گا. اور مقناطیس کے سامنے لوہا رکھ دیں، اس کو فوراً پکڑ لیں. ہم نے اپنی زندگی کو کچھ مقصد بنائے ہوئے ہیں، کچھ محبتوں کے مرکز بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ایسی ہے جیسے لوہا اور مقناطیس. ہم دیکھتے ہی اس کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے، ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی. اور آج ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، آج ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. یہ فرصت میرے دوستو کب نکلے گی؟ میں آج اپنے ایک صاحب کو میں آج ایک مثال دے رہا تھا، اس کو مثال دی میں نے کہ اگر بالفرض موجودہ بہت مصروفیت کا دور ہے سیاست والوں کے لیے، اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ آپ 3 دن مسجد میں نفلی اعتکاف کر لیں، یا کسی خاتون کو کہہ دیا جائے آپ 3 دن گھر میں نفلی اعتکاف کر لیں، زندگی کی خبر نہیں، اللہ کو منا لیں، تو وہ دیکھ کے کہے گا آپ دیوانے ہیں، پاگل ہیں. ہمارے دن رات گنے ہوئے ہیں، آج دن کو یہاں جلسہ ہے، رات کو وہاں جلسہ ہے، دن کو یہاں مصروفیت ہے، رات کو وہاں مصروفیت ہے. جب موت آتی ہے ساری مصروفیتوں کو جدا کر کے، اس کی اپنا شیڈول ہوتا ہے موت کا، اور زندگی ختم ہو جاتی ہے. آج ہماری بھی اپنے میرے دوستوں شیڈول ہیں، ہم بھی اپنی مرضی سے ترتیب سے چل رہے ہیں. کسی کا سیاسی शेड्यूल है मसरूफियत का, तो किसी का सनाती है और किसी का तजारती है और किसी का दफ्तरी है, किसी का फैक्ट्री का है। वो कहते हैं मेरी जिंदगी की तरतीब है, अगर मैं छोड़ता हूं मेरा सारा निजाम खराब हो जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, वक्त बहुत गुजर गया है, वक्त बहुत गुजर गया। जो गुजरे हुए लम्हों का फिक्र करेगा, जो गुजरे हुए लम्हों का एहसास करेगा, उसकी आखिरत मेरे दोस्तों बहुत बेहतरीन हो जाएगी। कब्रिस्तान में छोटी कब्रें भी होती हैं, कब्रिस्तान में बड़ी कब्रें भी होती हैं। कब्रिस्तान में छोटे लोग भी होते हैं, कब्रिस्तान में बड़े लोग भी होते हैं। सब के सब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और उनकी मसरूफियतें वहीं धरी की धरी रह गई। अजाली करम अल्लाह हुआ जो कब्रिस्तान तशरीफ ले गए और पूछा, कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है, ए वहशत वालों तुम्हारा क्या हाल है, ए बसीदगी वालों तुम्हारा क्या हाल है, और अपने गुलाम से कहने लगे, फरमाने लगे, अगर अल्लाह पाक इनको बोलने की इजाजत देते तो ये कहते कि हमारे बाद बीवियों ने दूसरे शोहर कर लिए, हमारी जायदादें तकसीम हो गई, हमारे अमवाल माल तकसीम हो गए और हम इबरत का निशान बन गए, और वो लम्हा जो हम छोड़ के आए थे आज उस पर पछता रहे। और आप हैरान होंगे, जन्नत वाले पछताएंगे जन्नत में जाके? जन्नत वाले क्यों पछताएंगे? काश एक लम्हा जिक्र का, एक लम्हा तस्बीह का, एक लम्हा घड़ी अल्लाह अल्लाह करने की कुछ और कर लेते, जन्नत वाले पछताएंगे और दोजख वाले तो पछताएंगे ही पछताएंगे, जन्नत वाले पछताएंगे। मेरे दोस्तों, कोई लम्हा ऐसा हो जो अल्लाह को मना ले, मैं आपको सच कह रहा हूं, बेबरकती का दौर चला है, बड़ी बेबरकती का दौर चला है। ऐसी बेबरकती का दौर है, सारा दिन लोगों की जिंदगी के मुशाहदात करता हूं, आज वो मालदार है तो कल ऐसा फकीर है कि घर कुछ भी नहीं। मेरे पास उस दिन एक साहब आए बैठे थे, कहने लगे कि उनके बारे में, उनके पड़ोसी ने मुझे बताया कि ये हर साल गाड़ी गाड़ी का मॉडल बदलते थे, इनके साथ बड़े बड़े रईसों के घर थे, वो भी ऐसा नहीं कर सकते थे, और इनकी माल दौलत तो की रेल पेल और चीज़ों की फरवानी इतना ज़्यादा थी कि सोच नहीं सकते। कहने लगे बहुत परेशान हैं, माली बहरान में आ गए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे मुलाकात हुई तो फूट फूट के रोने लगे। कहने लगे घर का बिजली का मीटर कट गया है, मैंने उसका बिल अदा नहीं किया और बिल अदा करने के पैसे नहीं हैं। और मुझे कहने लगे मेरे दो बेटे हैं, अगर उनको थोड़ी तनख्वाह पे आप कहीं कह दें, लगवा दें, शायद मेरे घर का गुजारा हो जाए। बेबरकति का दौर है, बहुत एहतियात से चलना होगा, मैं आपको सच कह रहा हूँ, बहुत बेबरकति का दौर है। जिसके पास है वो उसे कसरत समझे, कहीं बरकत ना समझ बैठे, अगर बरकत समझ बैठा धोखे में रहेगा। सुबह एक फोन पे एक साहब ने अजीब बात कही, मैंने उस बात को फिर दो दफा दोहराया उनसे अपने समझने के लिए। लोगों की जिंदगी के मुशाहदात आपके सामने बैठ के बयान करता हूं, किसी का नाम लिए बगैर, कि जिंदगी हर बंदे की राजदार है, राजदारी का मजमुआ है और मैं राजदार हूं। ये बातें सिर्फ इसलिए बगैर किसी का हवाला दिए अर्ज करता हूं कि किसी की जिंदगी के बहरान से शायद हम सबक सीख लें। कहने लगे मैंने अपनी इबादत पे तकब्बर किया, ये लफ्ज है, अपनी इबादत पे तकब्बर किया, मैं ये अमल मैंने किया, सूरत यासीन के ये अमल किए, फला अमल किए, फला अमल किए, फला अमल किए, फला अमल किए, और मैंने कहा कि मुझे तो जिंदगी में कभी कुछ खिजा आ ही नहीं सकते। और ये बात भूल गया, ये बात बाद में समझ आई कि कयामत के दिन तो जन्नत इतनी बड़ी नेमत, वो भी उसकी रहमत के बगैर नहीं मिलेगी, इबादत पे नहीं मिलेगी, तो उसकी रहमत के बगैर मिलेगी नहीं। कहने लगे ये कहानी मैं भूल गया और आज मेरे ऊपर जो हालात हैं, और जब उसने बयान किए तो वो यकीन जानिए दिल को हिला देने वाले और दिल को परेशान कर देने वाले हालात। हम तो इबादत करके, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं, इलाही मेरे तो इस्तिगफार को इस्तिगफार की जरूरत है। हम तो इस्तिगफार करके ना उससे इस्तिगफार करें। इसलिए फरमाया, बात याद रखिएगा, हजरत सुफियान सॉरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुनाहगारों के लिए इस्तिगफार तौबा होती है और इबादत करने वाले और जाहिदों के लिए और मुत्तकियों के लिए इस्तिगफार यह निजामत होती है कि इलाही जो इबादत का हक था अदा नहीं कर सके, इबादत का हक था अदा नहीं कर सके। लेकिन उसका वक्त आहिस्ता आहिस्ता सिमटता चला जा रहा है, उम्रें छोटी हैं, एक उम्रें छोटी, एक वक्त में बेबरकती, फिर माल में बेबरकती है। पहले दौर में मैंने पुराने पुराने लोगों से बैठ के उनके तजर्बात पूछता रहता हूं मैं। पहले दौर में जो मालदार होता था वो बहुत अच्छा मालदार रहता था, पर उसकी नस्लें माल उसमें मालदार होती थी। आज पल का पता नहीं। इस जुबान को अल्लाह की याद में लगा लें, अल्लाह पाक ने जो बरकत वाले अमाल दिए हैं वो करें, जो बरकत वाला जिक्र दिया है वो करें। अपने पल पल को, अपने लम्हे लम्हे को, अपने साथ साथ को, अपनी घड़ी घड़ी को कीमती बनाओ मेरे दोस्तों, कीमती बनाए। अपने एक एक लम्हे को कीमती बनाओ अल्लाह वालों। अगर एक एक लम्हे को हमने कीमती ना बनाया मेरे दोस्तों, ये लम्हा जाए हो जाएगा और इससे पछतावा होगा, इससे पछतावा होगा, आप यकीन जानिए इससे पछतावा होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का मैं एक वाक्य सुनाता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के दौर में किसी ने हज्जाज के बारे में कहा कि वो जालिम था, सफाफ था, जाबिर था। अब्दुल्ला बिन उमर, उमर रज़ी अल्लाह तआला के बेटे हैं, इस उम्मत के मुहद्दिस हैं और इस उम्मत की हदीसों के बहुत बड़े जमा करने वाले हैं और इस उम्मत के मोहसिन हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हज्जाज अब रब के पास चला गया, क्या लोगों के पास और मशगले ख़त्म हो गए कि वह हज्जाज की हिबत ही उनका मशगला बन गया? अब हज्जाज का और रब का मामला शुरू हो चुका है। अगर कयामत के दिन अल्लाह ने एहसान किया और जिन लोगों को उसने कत्ल किया उनके कत्ल का बदला अल्लाह ने अपने खजाने से दे दिया और उसकी गफूर और रहीम करीम जात ने उसे माफ कर दिया, तो तुम्हारे ऊपर गीबत का जो अकबाल होगा उसका क्या बनेगा बताओ? भाई बकौल एक अल्लाह वाले के, बदतरीन मशगला हुकाम को बुरा कहना है। जब अपनी जात की इस्लाह से चला जाता है, तीन बातें आज अर्ज करता हूं। जब आदमी अपनी अंदर की जात की इस्लाह नहीं करता, दिल को रौनक नहीं देता और दिल की आरायश और रिबायश और दिल के अंदर जो है नक्श निगार नहीं बनाता अल्लाह की मोहब्बत और कमली वाले की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फिर इसकी कोशिश होती है मैं मस्जिदों को नक्श निगार दूं। और मैं पिंडी में था तो मस्जिद की नमाज पढ़ने जा रहे थे सुबह सुबह, तो साथ एक मस्जिद थी, वो मुझे दूर वाली मस्जिद में ले जा रहे थे। मैंने कहा इधर न चले, कहने लगा जी यहाँ मुकाबला होता है, उसने मस्जिद में फलां फानूस लटकाया, फलां टाइलें लगाई, फलां किया, हम ये करेंगे, इसलिए मैं यहाँ नमाज पढ़ने से गुरेज करता हूँ। तो मुझे एक हदीस याद आई जो अलामात कयामत में है, हदीसों में आता है, सरवर कौनैन सल्लम ने फरमाया, मफहूम है कि कुर्ब कयामत की अलामत में एक अलामत ये भी है कि मस्जिदें बनाने में मुकाबले किए जाएंगे और मस्जिद को नक्श निगार दिए जाएंगे जब दिल के अंदर के नक्श निगार खत्म हो जाएंगे। एक बात, और मेरे दोस्तों, जब आदमी जात की तरक्की रुक जाएगी, जब जात की तरक्की रुक जाएगी और अपनी जात के अंदर नजर डालना छोड़ देगा, कि तेरे अंदर कितने ऐब और कौन से ऐब और क्या खामियां और क्या कमियां मेरे दोस्तों। फिर इसकी नजर पहले उम्माल पे जाएगी, हुक्मरानों पे जाएगी और उनके अंदर खामियां तलाश करना शुरू कर देगा। इसको यह बात नजर नहीं आएगी, जैसी रियाया होगी वैसे हुक्मरान होंगे। उस दिन एक बंदा, हम बैठे हुए थे वहां मीना में, तो एक बंदा जो है अपने इमाम साहब पे एतराज करने लगा, कहने लगे जी वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, बस आप कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं, मेरे कुछ थोड़े से दर्श होते रहे वैसे ऐसे। तो मैंने उनसे एक अर्ज किया, मैंने कहा कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के पास एक बंदा आया और कहने लगा कि हमारे इमाम साहब ऐसे ऐसे हैं। तो हजरत ने फरमाया ऐसा करो इमाम ना बदलो मुक्तदी बदलो। हजरत वो कैसे? फरमाया जैसे मुक्तदी होंगे वैसा इमाम होगा और जैसी रियाया होगी वैसे हुक्मरान होंगे। जो अपनी जात पे मेहनत करना छोड़ देते हैं फिर दूसरों के अंदर ऐब नजर आना शुरू हो जाते हैं सारे के सारे, ये जात पे मेहनत करना छोड़ते हैं। और जब आदमी की तरक्की होती है फिर उसके अपने अंदर से क्यों क्यों निकलती है कि तारिक तो ने फला काम क्यों किया था, फला बोल क्यों बोला था, फला लफ्ज क्यों किया था, ये क्यों किया था, ये क्यों किया था, ये क्यों किया था। और जब जात की तरक्की रुक जाती है फिर सारे आलम के लिए सारी दुनिया के लिए क्यों क्यों निकलना शुरू हो जाती है, उसने ये क्यों किया था, ये क्यों किया था। हमारा तो एक एक पल कीमती है। हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह के शेख हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह के जो मुर्शिद थे शेख जुर्जानी रहमतुल्लाह, सत्तू फाक रहे कि शेख अब सत्तू क्यों फाक रहे। फरमाया मैंने हिसाब लगाया है इतनी देर में 70 दफा सुभान अल्लाह ज्यादा पढ़े जाते हैं। मैं पिछले जुमे जिस दुरेश का मैंने तस्करा किया था कि फरमाने लगे मैंने इस रमजान मुबारक की 27 को कितने निसाब तकसीम किए हैं जी, 40 अर्ज किए थे निसाब तकसीम किए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप जो निसाब पढ़े 70,000 दफा कलमा पढ़ा, इसके कुछ वाकयात मुझे बताएं जो आपकी जिंदगी के मुशाहदात और तजर्बात। मैंने लगे मेरी वालदा का अपना वाकया है कि मैंने अपनी वालदा को देखा आखिरी वक्त में उनकी कैफियात तब्दील होने लगी, मैं डर गया। और ये सिर्फ मोमिन को पता चलता है, एक बात याद रखिएगा कैफियत का मोमिन को पता चलता है। मुझे ये बताएं हम मरीज को सेहतमंद देख रहे होते हैं, हम मरीज को सेहतमंद देख रहे हैं, जो मॉलेज है जो फिजिशियन है जो डॉक्टर है वो नब्ज पे हाथ रख के या स्टेथोस्कोप लगा के वो मायूसी का इजहार करता है, वो कहता है मुझे तो नब्जें टूटती नजर आ रही है। ऐसा होता है क्यों? उसने उस चीज में मेहनत की हुई होती है, जिसने अल्लाह पाक जल्ला शानों के ताल्लुक में मेहनत की हुई होती है और जिसने अल्लाह की मोहब्बत में मेहनत की हुई होती है उसे सच्ची बात पता है। हमारे पास एक मिस्त्री उस्ताद होते थे, वो गाड़ी को सिर्फ सलफ मारते थे और पुर्जे पुर्जे का नक्श बता देते थे। मुझे हमारे पड़ोस में एक साहब थे असलम साहब, वो बहुत अरसा सिनेमा के ऑपरेटर रहे। मुझे एक दफा कहने लगे मुझे सिनेमा में यूं सामने बिठा दो मैं बता दूंगा कि कौन से पुर्जे में खराबी है, ये चीज यूं कट रही है। एक दफा बहुत हो गए मेरे साथ ऐसे, एक दफा कोई दवाई के सिलसिले में आए तो ऐसी बात चली। हमारे एक दोस्त हैं वो तरबूज को यूं पकड़ के यूं जोर देते हैं थोड़ा सा और कहते हैं ये मीठा होगा और सुर्ख होगा और लाजवाब होगा, और यकीन जाने वैसे ही होता है। जो अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात आली पे मेहनत करता है उसको अल्लाह पाक को अपना बनाने के लिए और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को पाने के लिए उसके अंदर भी कुछ सलीका आ जाता है। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है यारब, तेरे आशिकों से सीखा तेरा संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना मुझे आ गया है मरना। तो फरमाने लगे मेरी वालदा को मैंने कैफियत देखी तो उसकी कैफियत तब्दील हो रही थी, कैफियत तब्दील हो रही थी। तो उस वक्त मेरे 70,000 के कलमे के कई निसाब पढ़े हुए थे, एक निसाब अम्मा को उसी वक्त बख्श दिया दिल ही दिल में, दिल ही दिल। अल्लाह के बख्श बख्शने की देर थी, अम्मा की हालत ठीक हो गई, अम्मा का खात्मा बिल खैर हुआ और मरने के बाद उनकी कैफियत बहुत बेहतरीन हो गई। कहने लगे मेरे दूसरा वाक्य सुनाया, मैं सफर में गया हुआ था, मुझे बुलाने के लिए आए कि भाई आपका भाई जो है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है और आखिरी वक्त है। उनका घर देहात में है, ऐसी सड़क से तकरीबन 2 एकड़ के करीब दूर है। तो भाई कहने लगे वहां मैंने आवाज सुनी उसकी, जो उसको सकरात लगी हुई है, नजा की कैफियत, और बड़ी आवाज ऊंची सुनी, खतरनाक आवाज सुनी। और लगे मैंने वहीं वैसे नीचे कदम रखा, ढलवान है थोड़ी सी, सड़क से उतर के उनके घर तक, गांव में घर है, कहने लगे मैंने ऐसे कदम रखा तो वहीं मैंने 70,000 का एक कलमे का निशा बख्श दिया, वहीं बख्श दिया। और कहने लगे बस ऐसे थोड़ी देर में आया और अपने भाई के सर को लेके मैं गोद में बैठा और अल्लाह से दुआ करता रहा और वहीं बैठे फिर दूसरा निशा बख्श दिया। कहने लगे उसी वक्त मौत आ गई और खात्मा ईमान पे हो गया, जबकि कई दिनों से रूह जिस्म में अटकी हुई। कहने लगे अभी मेरी पोती फौत हुई, उसको सर में फोड़ा था, उसकी कैफियत को मैंने देखा, उसके लिए मैंने जो है पढ़ा, अल्लाह ने उसका बेहतर मामला किया। उनके बेटे ने मुझे बताया कि उनके भाई यहां लाहौर यतीम खाने में होते थे, जिंदगी की कुछ कमी बेशी थी, जिस्म बहुत भारी था उनका, बहुत भारी था, मैंने उन्हें देखा हुआ था कि बड़ी चारपाई पे वो शख्स अकेला आता था। कहने लगे अब्बा को वो अचानक फौत हुए, दिल का अर्जा हुआ, अब्बा को हमने बाद में बताया कि कैसे बताएं, बूढ़ा बाप है, सदमा सह सके ना सह सके। कहने लगे अब्बा को बताया तो अब्बा रो पड़ा और उसी वक्त अब्बा ने एक उसे निसाब कलमे का बख्श दिया। कहने लगे जब मैयत हमारे यहाँ पहुंची लाहौर से और हमने मैयत को वसूल किया तो मैयत हल्की थी और मुझे कहने लगे आप जानते हैं वो शरीफ को, मिस्त्री शरीफ को, वो लकड़ी का काम करता है। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। कहने लगे शरीफ ने दोनों हाथों से यूं पकड़ के कब्र में उतार दिया और शरीफ को मैंने देखा हुआ है कि सूखा पतला सा आदमी है, तरखान है, लकड़ी का काम करता है, मजदूर आदमी है। फिर उसने कब्र में उतारा और यूं हाथों से पकड़ के और यूं कब्र में उतार दिया, रख दिया और बिल्कुल हल्का फुल्का। यह कलमे का पढ़ना कैसे आता है, ये उस वक्त आता है जब एक पल जाया ना किया जाए, एक लम्हा जाया ना किया जाए। आप यकीन जानिए अपनी जुबान को अल्लाह जल्ल शानहु के जिक्र से अगर हर वक्त तरोताजा रखें और जिक्र के आदि बने, आप सोते हुए भी जाकिर शागिल होंगे। कई लोगों ने मुझे अपनी कैफियत बताई कि नींद खुलती है तो वही जुबान पे जिक्र होता है। कहने लगे कि बाज़ औक़ात बे अख्तियार अपने आप को जब्त करना पड़ता है कि बैतुल खला में भी वही जिक्र शुरू हो जाता है कि अब हम किस हालत में हैं, अपने आप को जब्त करना पड़ता है। मजबूर होकर उसका नाम लिया, मजा ना आया है? मजबूर होके उसका नाम लिया, मजा ना आया। मैंने हाज साहब से पूछा, हाज साहब 70,000 दफा कलमे का कोई फायदा? बड़ा अजीब बात बताया। मुझे कहने लगा तू ही बेवकूफ है। मैंने कहा जी बस है तो ऐसी, और 90 साल की उम्र है उनकी, बुजुर्ग आदमी है और मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। कहने लगा तू बेवकूफ है। मैंने कहा जी हाँ बात तो ठीक है आपकी। फरमाने लगे जिस कलमे से मरने के बाद की खरबों साल की जिंदगी बन सकती है, मरने से पहले 50 साल जिंदगी मसले हल नहीं हो सकते। बात तो बड़ी दिल को लगी। जिस कलमे से मरने के बाद की खरबों साल की, और खरबों भी बस ये कैलकुलेशन भी मेरे ख्याल में बस ऐसी सिर्फ समझाने के लिए है, तो अल्लाह ही जानता है कि जब मौत की मौत आ जाएगी तो फिर जिंदगी कितनी लंबी होगी, और जहन्नमी की जिंदगी लंबी और जन्नत की जिंदगी लंबी होगी, और जहन्नमी जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा। यकीन जानिए कल मैं ऐसे खड़ा था सामने टेरिस पे, यहाँ सामने चर्च वालों के मेहमान आए, मैं सो खड़ा देख रहा था, यहाँ ये वजू की जगह पे ना सामने नजर आ रहा था, मेरे दिल से आने के लिए इलाही इनको दुनिया की तूने इतनी नेमतें दी हैं, आखिरत में मारूम रह जाएंगे, अल्लाह तेरे हुजूर के उम्मती हैं, या अल्लाह तो इनको हिदायत दे दे, या अल्लाह इनको कलमे वाली जिंदगी अता फरमा दे। यकीन जानिए, बात उनकी ठीक है कि जिस कलमे वाली, जिस कलमे की बरकत से, जिस कलमे की बरकत से मरने के बाद की हमेशा हमेशा की जिंदगी संवर सकती है, मरने से पहले की जिंदगी नहीं संवर सकती। मैंने कई लोगों को बताया, कई लोगों को बताया कि तीसरा कलमा पढ़े, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसमें कलमा आता नहीं आता, अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयल अज़ीम, कई लोग बताए। और जिसने इसको कसरत से पढ़ा, अल्लाह जल्ला शान होने उसकी दुनिया आखरत के गम दूर कर दिए, अल्लाह जल्ला शान होने उसकी दुनिया आखरत की मुसीबतें दूर कर दी, और अल्लाह पाक ने उसकी दुनिया आखरत की परेशानियां दूर कर दी। ये मेरे दोस्तों उस वक्त होगा जब एक लम्हा हम जाए नहीं करेंगे, हमारा एक पल जाए नहीं होगा, एक पल। एक बंदा कहने लगा, मैंने एक सियासी आदमी से पूछा, उसके हाथ में तस्बीह थी। मैंने कहा भाई ये तस्बीह तो लोग रखते हुए शर्माते हैं। उसने कहा जी किसी दरवेश ने हमें बताया है कि ये पढ़ो और जीत जाओगे, यहाँ शर्म की बात नहीं है, यहाँ तो जीत और हार का मसला है। हमें किस चीज से शर्म? यकीन जानिए मेरे जी में बात आई कि मोमिन की भी जीत और हार का मसला है। क्या ख्याल है? यकीन जानिए आज की जीत हार आरजी है। यहाँ हारने वाला फिर भी जीत सकता है। अच्छा, यहाँ हारने वाला चार दिन की कोई अगर थोड़ी सी जिल्लत है, अल्लाह चाहे फिर इज्जत दे दे। मेरे दोस्तों, आखिरत की जो हार जीत है वो आरजी नहीं होगी, वो टाइमी होगी। आखिरत की हार जीत बहुत बड़ी हार जीत है, और यहाँ के हारने वाले को तसल्लियां देने वाले, वहां के हारने वाले को माँ ही छोड़ जाएगी, वहां के हारने वाले को बाप ही छोड़ जाएगा, वहां के हारने वाले को बेटा छोड़ जाएगा, बेटी छोड़ जाएगी, औलाद छोड़ जाएगी, औलाद छोड़ जाएगी। वहां के हारने वाले को मेरे दोस्तों कोई कोई एक यहाँ के हारने वाले को कोई रियायती नंबर मिलते हैं, कोई फेल हो रहा हो कॉलेज में स्कूल में, कोई रियायती सिलसिला होता है, मेरे दोस्तों वहाँ तो माँ एक नेकी देने को तैयार नहीं होगी, बाप एक नेकी देने को तैयार नहीं होगा, बेटा एक नेकी देने को तैयार नहीं होगा, वहाँ कोई रियायती सिलसिला नहीं होगा। मैं सोचने लगा, उस बाबे को देख के चारपाई पे पड़ा, कंबल ली हुई जिस पे पैमंद लगा हुआ था, सो रहा था, मेरे अंदर जीन आया मैं इस जन्नती की ज्यारत कर लूँ। यकीन इतना इबादत करने वाला, फिर हदीसों में आता है 70-80 साल के बाद तो अल्लाह गुनाह लिखना ही खत्म कर देते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे इस बंदे से अब हया आती है, फरिश्तों लिखो ही ना। और वो सारे मामलात जब सामने आए ना, इतना इबादत करने वाला, इतना अल्लाह अल्लाह करने वाला, इतना जिक्र करने वाला, और इतना तस्बीह पढ़ने वाला, और इतना अल्लाह को याद करने वाला, जिंदगी बड़ी शफाफ है, और फिर बुढ़ापे की ऐसी उम्र तक पहुंच चुका है जहां हदीस में अल्लाह पाक जल्ला शानो फरमाते हैं मुझे अब हया आती है, तो क्या ख्याल है वो जन्नती नहीं है? मेरे जी में आए इसको देखता रहा, मैं ये जन्नती है, मैं जन्नती की ज्यारत कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, ये चीजें मैं आप पा सकते हैं, ये चीजें हमें आप ले सकते हैं, बस थोड़ा सा अपने वक्त का ख्याल रखें, अपने पल पल का ख्याल। ये पाकिस्तान के एक बैंक है, वो शख्स पहले किसी बड़े बैंक के साथ था, उनसे कुछ इख्तलाफ हुआ, उसने अपना बैंक खोला। कुछ पुरानी बात अर्ज कर रहा हूँ, कभी दुबई का चक्कर, कभी यूरोप का, कभी पाकिस्तान का, उसका हर वक्त यही सिलसिला होता था, भाग दौड़ भाग दौड़, पूरे मुल्क में बैंकों की शाखें खोलनी, पूरी दुनिया में खोलनी। इतना ये हुआ, इतना हुआ कि 6 महीने तक मियाँ बीवी एक दूसरे का चेहरा ना देख सके। आखिरकार बीवी ने अदालत में इस्तगासा कर दिया। जब इसके पास मेरे लिए वक्त देने को नहीं है, मेरे पास वक्त ही नहीं है देने को, तो फिर हम, मैं नहीं रह सकती इसके साथ, ये मुझे तलाक दे दे। और उसने बयान दिया कराची की अदालत में, उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है, एक बिजनेस किया है और उसको मैंने वक्त देना है, अगर मैंने उसको वक्त ना दिया मेरा सारा नुकसान हो जाएगा। मेरे दोस्तों हमारे पास भी बहुत बड़ा बिजनेस है, हाल अदुल्लुकुम आला तिजारत तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। और मेरा रब कहता है क्या तुम्हें ना बताऊं मैं तुम्हें ऐसी तिजारत। मैंने आयत पढ़ी उसका मफहूम है, अल्लाह पाक आयत पढ़ने की कमी बेशी माफ फरमाए, कि तुम्हें तिजारत ऐसी ना बताऊं जो तुम्हें बड़े आदाब से बचा दे। मालूम हुआ अल्लाह जल्ला शानहु से मोहब्बत और उसके हबीब सरवर कौनैन सल्लम से ताल्लुक बहुत बड़ी तिजारत है, घाटे का सौदा नहीं है, ये बहुत बड़ी तिजारत है, बहुत बड़ी तिजारत है। कोई पल रह ना करें, कोई पल रह ना करें, कोई पल रह ना करें। मैंने एक बुरी खातून को देखा, वो कहती है मैंने आज तक वक्त जाया नहीं किया। फारिग वक्त में दर्जी की दुकान के कतरे लेके ना छोटी छोटी उसका मैं बांध बनाती रहती हूँ, वो फेंक देते हैं, ये ले आती है बुढ़िया और ये, और मुझे चारपाइयां दिखाई, मैं उस चारपाई में खुद बैठा हुआ था। कहने लगे इतना मजबूत बांध है तो सोच नहीं सकते, और ये गलता नहीं और ये खराब नहीं होता, ये फारे वक्त में मैं ये करती हूँ। मैंने एक बुढ़िया को देखा, वो फारे वक्त में जहाँ कपास के ढेर लगे होते थे उन रास्तों पे चलती थी और कपास चुनती थी, और कपास चुन चुन के एक एक टुकड़ा उधर से उधर से, जो सड़कों में बिखरा हुआ होता था, किसी की चोरी नहीं करती थी, जो सड़कों में बिखरा हुआ होता था, और चुन चुन के फिर वो अपनी बेटियों को, अपने पोतों को, अपनी पोतियों को रजाइयां और तकिया और बच्चों के बिछौने हदीये में देती थी, हदीये में देती थी। जिंदगी का एक एक पल चुनना पड़ेगा, जिंदगी का एक एक लम्हा चुनना पड़ेगा, वरना पछतावा होगा। जब जन्नत ही जन्नत में जाके ही पछताएगा तो जहन्नमी का पछतावा कितना बड़ा होगा। आज सांस हमारा साथ दे रही है, आज जुबान हमारा साथ दे रही है, आज लम्हे हमारा साथ दे रहे हैं, आज घड़ियां हमारा साथ दे रही हैं। मेरे दोस्तों सोचो, इन लम्हों को अपने साथ दे दो, अपनी अपनी मोहब्बतों के महवर कुछ और बना लीजिए। जिससे मोहब्बत करते हैं फिर लोहा मोहब्बत करता है मैग्नेटिस से, उसका रंग सिया है, फिर अल्लाह जल्ला शानहु जो है ना उसको कुटवाते हैं, फिर उसको आग में जलवाते हैं, फिर उसको, और फिर पता क्या होता है, उसके बावजूद भी वो मैग्नेटिस को नहीं छोड़ता, फिर उसका पता क्या करते हैं, फिर उसको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करके ना उसको साफ करते हैं, उसको स्टेनलेस स्टील, और फिर वो मैग्नेटिस को छोड़ देता है, फिर उसका रंग भी सफ़ेद हो जाता है, हो जाता है ना, लोहे का अपना रंग बदल जाता है, फिर वो मैग्नेटिस को छोड़ देता है, छोड़ देता है। मोर जो है शेर पे आशिक है, ये मोर का नाच जो है ये मुहावरा है, जहां शेर की आवाज सुनेगा और जहां शेर का साया सुनेगा उसी तरफ लपकेगा, और शेर भी इसे कुछ नहीं कहता, ये उसके सामने नाचेगा, और शेर के जिस्म के ऊपर कीड़े होंगे ये चुन लेगा, और शेर के मुंह के अंदर गोश्त होगा तो उसमें मुंह से चुन लेगा। इसको शेर से मोहब्बत है, और उस मोहब्बत का सिला क्या है, उसके मोहब्बत के सिले में कीड़े मिले और उस मोहब्बत के सिले में शेर का बदबूदार गोश्त मिला। ये चकोर जो है ना, चकोरी चकोर, इसको चांद से मोहब्बत है, जानवर है, चांदनी रात में बस ये चांद के आगे फरिश्ता होता है, ये जानवर पागल हो जाता है, पागल हो जाता है। और जो शिकारी है ना, वो मोर का शिकार करने के लिए शेर की खाल पहन लेते हैं, और शेर की जो लीद होती है वो खाल पे थोड़ा सा मल लेते हैं, उसकी खुशबू आए, बू आए, खुशबू तो नहीं बू आए, और फिर जो है वो मोर पागल हो जाते हैं, आखिरकार शिकारियों के हाथ पकड़ा जाता है। आज देखें हम हमारे अंदर किस चीज की मोहब्बत है, और जिस चीज की मोहब्बत होती है उसका तस्करा भी होता है, उसका ख्याल भी होता है, उसका गुमान भी होता है। सारी चीजों की मोहब्बत पे अल्लाह जल्ला शानहू की मोहब्बत गालिब आ जाए और उसके हबीब सरवरे कौनैन सल्लम की मोहब्बत गालिब आ जाए, सारी चीजों की मोहब्बत। मैं उस वक्त तक तुम्हारा कामिल ईमान हो नहीं सकता, उस वक्त तक तुम कामिल नहीं हो सकते जब तक के तुम्हारे दिन और रात और तुम्हारी सुबह और शाम और तुम्हारा हर पल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान होने के लिए ना हो। मैं उस दिन दोस्तों से आस करने लगा, सरवरे कौनैन सल्लम का नाम कितना बरकत वाला है कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह अहमद और रसूलुल्लाह, ये बंदा जो हर नमाज के बाद 35 दफा पढ़ेगा, जुमे की नमाज के बाद 35 दफा पढ़ेगा, इसके इतने कमालात हैं आप सोच नहीं सकते कि अल्लाह उसको देगा क्या। तो थोड़ा सा बंदा वक्त निकाले, अच्छा वक्त है, वक्त है, वक्त है। नमाजों का सोचा कि ये ट्रेन में सफर करते हैं लोग, तो अपने साथ जरूरियात जिंदगी की चीजें लेके चलते हैं और हर चीज मुख्तसर लेके चलते हैं और उससे फिर गुजारा होता है। जिंदगी का सफर मेरे दोस्तों, जब तक इसमें अपने आप को समेट के नहीं चलेंगे, अपने दामन को, मेरे दोस्तों उस वक्त तक वक्त नहीं निकलेगा। हमने तो खवातीन बेचारों को जो है उनका ओढ़ना बिछोना, वो कहते हैं अंग्रेज किचन में सोता है, मुझे बंदा कहने लगा अंग्रेज किचन में सोता है, हमने ओढ़ना बिछोना ही किचन में बना लिया उन बिचारियों का, अपनी जिंदगी की लज्जात को इतने बढ़ा लिया कि वो हमारी खवातीन बिचारी जो हैं वो सुबह से लेकर शाम तक किचन में घुसी रहती है। अब आदमी का जहां वक्त ज्यादा लगेगा वो तो वहां की बोली बोलेगा और फिर वहां की किताबें पढ़ेगा। हमारी किताबों के छापने वाले पब्लिशर हैं, कहने लगे कि आजकल खाने पकाने वाली जो किचन की किताबें हैं, बल्कि प्रोग्राम है अगर कोई चैनल वगैरह में, ये ज्यादा देखे जाते हैं। क्यों? मतने खाना पीना मकसद बना लिया, और वो वक्त जो मुसल्ले को देना चाहिए था औरतों को और औलाद को अल्लाह का नाम सिखाना चाहिए था, अल्लाह जल्ला शानों की मोहब्बत सिखानी चाहिए थी, सरवरे कौनैन सल्लम का इश्क और मोहब्बत और कमी वाले के नाम पे मर मिटना सिखाना था, वो वक्त सारा का सारा लगता है वहां खाने पकाने में। लज्जात के बंदे, ख्वाहिशात के बंदे, मेरे वास्तव दोस्तों, हाँ जिस्म तो मिट्टी ही कहा जाएगा। इस जिस्म को बचाते 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 बड़ी फिटनेस, बहुत ज्यादा फिटनेस, बहुत ज्यादा फिटनेस और बड़े लिबास और बहुत कपड़े और जिंदगी की हर चीज में गैर मुल्की चीज, आखिर अंजाम मौत। कतर में एक बहुत बड़े अरब ने एक महल बनवाया, 5 साल तक गैर मुल्की माहरीन उसके महल को बनाते रहे, उसका जो महल का गेट था ना उस पर पाइप लगे हुए थे यूं, और वो रूल करते थे ऐसे। वो किस लिए? उसके पास बहुत कीमती ऊंट थे, बहुत कीमती ऊंट, अरब को ऊंट पालने का शौक है बहुत ज्यादा, घोड़े पालने के लिए, ऊंट पालने का, घोड़ों से ज्यादा ऊंटों का शौक है। अब ऊंट दरवाजे के बाहर न जाए, वो फिसलने वाले पाइप थे, ऊंट का पैर आता ना तो वो पाइप फिसलता, ऊंट डर के बाहर नहीं जाता था, वो ऊंट की सिक्योरिटी थी। और पता नहीं क्या अजीबोगरीब निजाम थे, 2-2.5 साल उसको रहना नसीब हुआ और उसके बाद फौत हो गया, फौत हो गया। और अजीब बात यह है कि उसकी कब्र एक ऐसे बद्दू के साथ बनी जिसने सारी जिंदगी खैमे में जिंदगी गुजार दी थी। मुल्तान में एक साहब अपने वालिदैन को कहने लगे, वालिद साहब उनके बाहर रहते थे खलीज के मुल्कों में, तेल के मुल्कों में, अब्बा जी शक्ल तो दिखा जाए बच्चों का। फिर एक जगह पढ़ा, बच्चों का मतालबा था अब्बा जी शक्ल तो दिखा जाए। तो अब्बा जी तशरीफ लाए, कहने लगे ठीक है। साल हर साल के बाद और बच्चों ने सामने एयरपोर्ट से अब्बा को देखा कि अब्बा बेल्ट से सामान ले रहे हैं। अब्बा ने हाथ हिलाया बस मैं, और शक्ल दिखाई कि मैं सामान लेके आ रहा हूँ, और वहीं खड़े फौत हो गए, क्योंकि अब्बा जी शक्ल दिखाने आए थे। मेरे दोस्तों, जिंदगी की कोशिशें करते 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 अपना कुछ ना बना सके, बकौल अल्लाह वाले के कितना बदकिस्मत इंसान है, घर वालों की दुनिया बना के अपनी आखिरत बर्बाद कर जाता है। उससे बड़ा कोई बदकिस्मत इंसान है, उससे बड़ा कोई नादान है जो लोगों की दुनिया की खातिर अपनी आखिरत बर्बाद कर जाए, उससे बड़ा कोई नादान है? नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा इससे बड़ा नादान। एक साहब मेरे सामने अपने वालिद को गालियां देने लगे, कहने लगे उसने लाखों में रिश्वत क्यों नहीं ली थी, क्यों नहीं ली थी, हजारों में क्यों ली? मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस चीज का यकीन होता है वहां का सफर की तैयारी और वहां का बैग बांधना और वहां का बिस्तर बांधना आसान होता है। ये पता है मौत आती है, मौत का यकीन है। पहले जब जनाजों में जाते, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब जनाजे में जाते थे, वापसी भी उनको चार बजे उठा के ले आते थे, कि इतना रोते थे, निढाल हो जाते थे कि चलने के काबिल नहीं होते थे। और पहले जब जनाजे के साथ लोग चलते थे, इतने अश्कबार होते थे, रोते थे, पता नहीं चलता था कि इनमें से कौन है, किसका माँ या बाप किसका, ये वारिस कौन है, ये पता नहीं चलता था। कि सारे ही रो रहे होते थे और वो मैयत को नहीं रो रहे होते थे, अपने आइंदा आने वाली मौत को रो रहे होते थे कि हमने भी ऐसे ही सफर करना है। मोमिन का कोई पल जाया नहीं जाता, मोमिन का हर पल कीमती होता है। मोमिन अगर सोता भी है रात को तो इस जज्बे को लेके सोता है कि या अल्लाह तेरा हुक्म है और सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, और या अल्लाह मैं इस जिस्म को यह कुछ सुकून और कुछ तसल्ली दे रहा हूं, इसलिए कि ये जिस्म फिर से तेरी इबादत के काबिल हो जाए। मोमिन तो सोता भी इस नियत को, मोमिन तो खाता ही इस जज्बे के साथ है कि या अल्लाह तेरा हुक्म है और सरवरे कौन है ससलम का तरीका है, मैं उस तरीके से खाऊंगा और या अल्लाह इससे जो ताकत आएगी अल्लाह तेरे हुक्म और तेरे हबीब सरवरे कौन है ससलम के तरीकों पर जिंदगी गुजारूंगा, अगर उस पर जो ताकत आएगी। मोमिन तो इस जज्बे से खाता है, इस जज्बे से पीता है, इस जज्बे से चलता है। ये है मोमिन। तो मेरे दोस्तों, अपनी सोचों को बदलें, अपने चलने के, सोचने के, अपनी जिंदगी के अंदाज बदलें, अपनी औलादों को जिंदगी की तरतीब सिखाएं, वरना मेरे दोस्तों बेनाम हो जाएंगे, बेनिशान हो जाएंगे, औलादें सदका जारिया नहीं बन सकेंगी बल्कि बवाल बनेगी। औलाद का हर गुनाह, औलाद की हर गफलत, औलाद का हर बुराई वालिदैन के जिम्मे जरूर आएगी, और औलाद की हर नेकी वो भी वालिदैन के जिम्मा होगी। यह हकीकत कह रहा हूं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, फजल सदकात में है, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने ऐसे ख्वाब देखा, कब्रें फट गई और लोग कब्रिस्तान से कुछ चुन रहे, यहां से वहां से चुन रहे। एक साहब को देखा बड़ी ठाट से बैठे हुए, आप नहीं चुन रहे? उनसे जाके मैंने पूछा, बोला फला बाजार में मेरा एक बेटा है, वो मुझे रोजाना एक कुरान पाक पढ़ के देता है, यानी मुझे परचून की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जुबान में कह रहा हूं, मैं होलसेलर हूं, थोक का व्यापारी हूं, इस परचून की मुझे जरूरत नहीं। उन्होंने बेटे का पता पूछ लिया। ख्वाब खत्म हुआ, सुबह हुई तो वहां गए तो देखा कि एक साहब है, कोई हलवा कनवा चीज बेच रहे हैं और उनकी जुबान हिल रही। पूछा क्या पढ़ रहा? कहा कुरान पढ़ रहा। कहा कितना पढ़ता? कि एक पढ़ता हूं। और क्या करता है? अपने वालिद को हदिया करता हूं। फिर कुछ अरसे के बाद ऐसा ख्वाब देखा, और ख्वाब देखा तो देखा कि वो साहब भी साथ चुन रहे। आप क्यों चुन रहे? कहने लगा मेरा बेटा फौत हो गया जो मुझे हदिया देता था। ऐसी औलाद कैसे, कहां मिलेगी, किसको मिलेगी? इस औलाद पे मेहनत करनी पड़ेगी, इस औलाद के लिए अल्लाह से मांगना पड़ेगा, इस औलाद को पहले दिन यह सबक सिखाना पड़ेगा। कि देखो हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह जल्ल शानहू को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना है। जब हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करेंगे, इस पे अल्लाह खुश होगे, हमें पालेगा। याद ये बात याद रखिएगा, जब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करेंगे ना, इस पे खुश होके मेरा रब क्या करेगा? हमें पालेगा। इस पे राजी होके अल्लाह हमें पालेगा, और फिर अल्लाह हमें नहीं पालेगा, हमारी नस्लों को पालेगा, और सारे आलम के इंसानियत को हमारी वजह से पालेगा। तो पहले से मेरे दोस्तों यह सबक सिखाना होगा। अपनी जिंदगी के सोचों को, अपनी जिंदगी के मोड़ों को, अपनी जिंदगी के रुख को, अपनी जिंदगी के अंदाज को बदलना है मेरे दोस्तों। अल्लाह वालों बदलना है। बारिश हो रही, सख्त सर्दी भी है, रास्तों में कीचड़ भी है, आप हजरा तशरीफ लाए बैठे हैं, एक जज्बा है जो आपको लाया है। सबके पास तो गाड़ियां नहीं है, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई वैन, कोई बस, कोई गाड़ी, पता नहीं कोई कैसे आया, कोई कैसे पहुंचा, कोई क्या मसरूफियत छोड़ के आया, कोई क्या जिम्मेदारी छोड़ के आया, कुछ कैसे कुछ कैसे। इस वाले से तो हमारे हाजी तारीख से भाई बैठे हैं, बाकी तो सारे आप दूर के हैं। मेरे दोस्तों ये एक जज्बा है अल्लाह जल्ल शानहु को पाने का, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पाने का एक जज्बा है जो आप हजरात को दूर परे से खींच के लाए। इस जज्बे से वफा करना और इस जज्बे की कदरदानी करना। याद रखिएगा जो अल्लाह जल्ल शानहू के लिए चलता है, और जो अल्लाह पाक जल्ल शानहू की मोहब्बत को लेके चलता है, और जिसका मतलूब सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है, और जिसका मतलूब सिर्फ मोहम्मद और रसूलुल्लाह है, अल्लाह जल्ल शानहू उसके दिल के जज्बों को खूब जानता है। अल्लाह पाक उसके अंदर की गहराइयों से उसको जानते हैं। मेरा रब खूब जानता है इसके अंदर जज्बा क्या है, इसके अंदर गम क्या है, इसकी सोच क्या है, वो खूब जानता है। करीम, वो करीम खूब जानता है। अपने अंदर के जज्बे को मेरे दोस्तों, और अपनी नस्लों के जज्बों को अल्लाह जल्ल शानहू की मोहब्बत पे लाओ, और अपने औकात को अल्लाह की याद के लिए मेरे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा फारिग करें। हमारी जुबान हर पल चलती रहे, हमारा जिक्र चलता रहे। मैंने अभी अर्ज नहीं किया, परेशान होके उसका नाम लिया तो मजा ना आया है? परेशान होके लिया, कोई 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 हादसा हो गया, कोई परेशानी हो गई, कोई गम आ गया, कोई फिक्र, कोई कुढ़न, कोई दर्द, कोई क्राइसिस, कोई मुश्किलात, फिर उसका नाम लिया तो घाटे में नहीं है। ऐसी बात नहीं कि उसका नाम नहीं लिया, लेकिन उससे पहले ले लें कि दो नेमतें ऐसे हैं कि अक्सर लोग उनकी कदर नहीं करते। दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उनकी कदर नहीं करते, एक सेहत की नेमत, एक फुर्सत की नेमत, एक सेहत की नेमत, फुर्सत की नेमत, अक्सर लोग उनकी कदर नहीं करते, अक्सर लोग उनकी कदर नहीं। अल्लाह मरीजों के पास जाया करें, यकीन जानिए और उनसे दुआ कराया करें, उनसे दुआ कराया। अभी मैं एक मरीज के पास गया, एक बहुत बड़े आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, उनके पास गया, उनको फालिज हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि मेरी दुआ फरमा। अब यकीन जानिए उसका एक हाथ तो काम नहीं करता था, एक हाथ ऐसे उठाया, बस वो हाथ उठाते ही वो शख्स बिलक बिलक के रोने लगा। और मैंने समझ लिया कि यही वक्त होता है जब अल्लाह को तरस आ जाता है। मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी को के दिन रात कीमती बनाएं, अपनी जिंदगी के दिन रात कीमती बनाएं। जिसके अंदर ईमान नहीं वो भी दिन रात यही सोचे कि मेरे माल मेरी चीजें कैसे बढ़ें, और जिसके अंदर ईमान है वो भी यही सोचे। मैं नहीं कहता आप तरक्की ना करें, मैं कहता हूँ अल्लाह पाक आपको और ज्यादा बरकतें अता फरमाए, आपको अल्लाह पाक और वसतें अता फरमाए और ज्यादा। लेकिन इतनी बात जरूर करूंगा, अपनी जिंदगी की सारी तरतीब में आखिरत को सामने रख के चले, मौत की घड़ी को सामने रख के चले, बेबसी की मौत न मर जाए, बेकसी की मौत न मर जाए, ऐसी मौत न मर जाए जिस मौत के बाद पछतावा हो। कि जवानी और मसरूफियत हमें सोचने का मौका ही ना दे, और अपनी जिंदगी में हम दिन रात ऐसे चलते 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 आखिरकार झटका लगे और मर जाए। मैं अभी जो आपको मिसाल दी कि ये मौजूदा सियासत वाले हमारे जो हमारे हजरात हैं, इनसे कह दिया जाए कि आप 3 दिन किसी मस्जिद में इतकाफ कर लें, अल्लाह कर लें, अल्लाह को मना लें, तो आपको चेहरा देख के हंस पड़ेंगे, कह लेंगे आप दीवाने लगते हैं, लगता है कि आपका जहन कुछ थोड़ा सा मुतासर हो गया। इस मसरूफ वक्त में आज हमारा फलां जगह जलसा है, आज फलां जगह, आज फलां जगह, आज फलां जगह, इस मसरूफ वक्त में अगर आपका ज्यादा कुर्ब होगा ना तो कहेंगे ठीक है फिर इलेक्शन के बाद कर लेंगे, ज्यादा मोहब्बत भी होगी, इनकार की जगह नहीं है, इनकार नहीं कर सकते, इस वक्त मसरूफियत है। लेकिन क्या क्या मौत कोई शेड्यूल लेती है, है? पहले से वक्त लेती हो, कुछ तरतीब बनाती हो? हाँ, ये याद रखिएगा, किसी की मौत पे खुश नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। बल्कि अभी खातून फौत हुई तो एक साहब, जिस वक्त मैं बैठा था, मैं एक मस्जिद में बैठा था, उस वक्त शाम के तकरीबन 7:15 बजे थे, 7:30 बजे थे, मैं एक मस्जिद में बैठा हुआ था, तो वहीं मुझे आके किसी ने कान में कहा, तो मैंने इन अल्लाह पढ़ी, साथ एक बंदा खुश हुआ, मैंने कहा नहीं, किसी मुसलमान तो का किसी काफिर की मौत पे भी हमें खुश नहीं होना चाहिए। और फिर मौत के जो अंदाज हैं, मेरा रब तो इस अंदाज को भी नापसंद करता है कि किसी को मार देना, अल्लाह के यहां तो ये चीज निहायत नापसंदीदा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये उस वक्त चीजें पैदा होती हैं जब अल्लाह की जाति आली से गफलत पैदा हो जाए, और ऐसे बैठे बैठे लोग मर जाया करते हैं। और अजीब बात बताऊं, मैं अलामत कियामत में ये है, मारने वाले को पता नहीं मैं क्यों मार रहा हूं, मरने वाले को पता नहीं मैं क्यों मर रहा हूं, अलामत कियामत में है, मारने वाले को पता नहीं मैं क्यों मार रहा हूं, और मरने वाले को खबर नहीं मैं क्यों मर रहा हूं, मैं किस जुर्म में मैं मर रहा हूं। अपनी जिंदगी की राहों को मेरे दोस्तों सोचें, अपनी जिंदगी की तरतीब को सोचें, अपनी जुबान को अल्लाह जल्ल शानों की याद में रोज कुरान पाक की ज़ियारत किया करें, एक सफ़ा, दो सफ़े, एक पाओ, दो पाओ, एक रुकू, दो रुकू, रोज कुरान पाक की ज़ियारत किया करें। ख्याल करना कहीं कुरान पाक को क़यामत के दिन अपने खिलाफ गवाह न बनवा लेना, ख्याल करना अपने खिलाफ दावा न करवा देना अल्लाह वालों, बड़ा सख्त इसका दावा होगा। कुरान पाक की एक सूरत तबारक अल्लाह जी, वो तो अल्लाह जल्ल शानों के सामने अड़ जाएगी, हदीस का मफहूम है कि अल्लाह मुझे ये पढ़ता था, या इसकी बख्शिश फरमा या मुझे फिर कुरान से निकाल दे। अजीब बात, एक सूरत का तो ये आलम है और पूरे कुरान की ताकत क्या है। हाँ, اللہ خالق ہے, اس کا کلام بھی خالق ہے, اور خالق کی طاقت بڑی عجیب ہوتی ہے. اس قرآن کا خیال کرنا قیامت کے دن یہ قرآن پاک کہیں ہمارے خلاف خود گواہیاں نہ دے. ارے جو قرآن کو مانتا نہیں اس کی کہانی تو ویسے ختم ہو گئی, کیا خیال ہے اللہ والو؟ اس کی بات تو ختم ہو گئی. جو قرآن کو مانتے, میں ان سے عرض کر رہا ہوں, جو قرآن والی زندگی کو گزارنے والے ہیں یا قرآن کو ایک مقدس کتاب سمجھنے والے ہیں, اس کو روز پڑھا کریں, چاہے دھاگا رکھ دیا کریں, کاغذ کی نشانی رکھ دیا کریں, ایک صفحہ دو صفحے, ایک پاؤ دو پاؤ, ایک پارا دو پرے, ایک رکوع, روز اس کو دیکھا کریں اور روز کیا اللہ پاک سے عرض کیا کریں, یا اللہ اس قرآن کا نور مجھے اور میری نسلوں کو اور پورے عالم کو عطا کر, اور یا اللہ اس قرآن کی زندگی مجھے میری نسلوں کو اور پورے عالم کو عطا کر. قرآن کو سامنے رکھ کے دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور پھر قرآن گواہ بن جاتا ہے. قیامت کے دن یہ قرآن کہے گا الہی اس نے دعا کی تھی, چاہے اس کو ملا یا نہ ملا. اور یاد رکھنا قیامت کے دن یہ دعا بچوا بھی جائے گی, بخشوا بھی جائے گی, اور نسلوں کو بھی جنت میں ساتھ لے جائے گی کہ یا اللہ یہ مانگتا تھا, اس کا جذبہ تھا, اس کے اندر درد تھا, اس کے اندر سوز تھا. اپنی زندگی کے دن رات میرے دوستو سنواریں, زندگی کی مصروفیات کرتے 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 آخر کار موت آ جائے, یہ کوئی مومن کی زندگی ہے؟ نہیں میرے دوست, نہیں میرے دوست, نہیں, بالکل نہیں. اس پہ سوچیں میرے دوست, میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں بار بار, میری سادہ سی باتیں ہیں, ایک فکر کی کہانی ہے, ایک غم کا ایک جذبہ ہے, وجدان ہے جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں, بیٹھ کے باتیں ہی کرتا ہوں. میں کون سی تقریریں کرتا ہوں, خطاب کرتا ہوں, درس دیتا ہوں, بیان دیتا ہوں, کچھ بھی نہیں, میں تو آپ سے بس ایسی واقعات کے انداز سے, مشاہدات کے انداز سے کچھ آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ میرے بھی دل جیوں میں اتر جائے, دل میں اتر جائے, آپ کی جیوں میں اور دل میں اتر جائے. میرے دوستو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. میں اپنی آخری باتیں, پہلی باتیں آخر میں دہرا کے بات ختم کر رہا ہوں. سنیں, میں نے عرض کیا ہے کہ زندگی تھوڑی ہے, ایک زندگیاں عمریں تھوڑی ہیں, ایک بے برکتیاں بہت زیادہ ہیں, دن گزرتے پتہ نہیں چلتا. فرمایا کہ وقت آئے گا, لکھا ہے وقت آئے گا, کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب سال ایسے گزریں گے مہینے, اور مہینے ایسے گزریں گے ہفتے, اور ہفتے ایسے گزریں گے دن, اور دن ایسے گزرے گا جیسے چنگاری. آگ جلائے نا, آگ میں سے شرارہ چنگاری نکلتی ہے, یوں اوپر جا کے بجھ جاتی ہے. آج دن ایسے دن ابھر رہا اور ڈوب رہا, اور دن ایسے چڑھ رہا اور ڈوب رہا. تو ایک عمریں چھوٹی, دوسرا بے برکتیاں, مال میں بے برکتی, رزق میں بے برکتی, اور ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک نے مہنگائی کا ہمارے اوپر عذاب بھیج دیا ہے, ہماری بدعمالی کی وجہ سے. عجیب بات بتاؤں, روز اوپر سے آسمان سے ایک لسٹ فرشتہ اعلان کرتا ہے. ہاں, پڑھ کے دیکھیں تفسیر کی کتابوں میں, ایک فرشتہ روز اوپر سے اعلان کرتا ہے کہ آج فلاں چیز فلاں بھاؤ ہوگی, فلاں چیز فلاں بھاؤ ہوگی. آپ کو کوئی اگر کوئی سیاست والا بندہ ملے نا جو اقتدار میں رہ چکا ہو, وہ کہے گا کوئی بھی اقتدار والا نہیں چاہے گا کہ مہنگائی ہو, مہنگائی ہوگی, اس کی حکومت بدنام ہوگی. وہ تو اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں, اور کس پہ فیصلے ہوتے ہیں؟ ہمارے اعمال کو سامنے رکھ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں. ایک صحابی ہے ابو قلابہ رضی اللہ, وہ بازار میں فرمانے لگے, دو شخص بازار میں گئے, کہنے لگے دیکھو یہاں غفلت کا ماحول ہے, غفلت کا ماحول ہے, ہم دونوں دعا نہ کریں. غفلت میں جو دعا کی جاتی ہے, غفلت میں جو شخص اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے ساتھ استحضار کرے اور دعا کرے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. کہنے لگے ہاں دعا کرو. اب انہوں نے دعا کی, خوب دعا کی, उनमें से एक फौत हो गए। उसने ख्वाब में देखा क्या बना, कहा वो बाजार वाली दुआ काम आ गई और अल्लाह जल्ला शान ने मेरी बख्शिश कर दी। तो बस अब ये फैसला कर ले कि आज के बाद कोई पल हमारा गफला से नहीं गुजरेगा। क्यों अल्लाह वालों, कोई लम्हा, कोई पल, कोई साथ, कोई घड़ी हमारी गफला से नहीं गुजरेगी, और हर पल में, हर लम्हे में अल्लाह जल्ला शानहु की रजा और अल्लाह पाक जल्ला शानहु की चाहत को ढूंढते जाएंगे। या दुनिया का कोई कारोबार करें, आपको मुबारक हो, कोई कारोबार करें, हलाल जराए जो अख्तियार करें, रिस्क पाने के वो सारे मुबारक रास्ते हैं, वो भी इबादत के रास्ते हैं। बस उन रास्तों में अल्लाह जल्ला शानहु को साथ राजी करते जाएं, अल्लाह पाक वो अता फरमाएगा, आप सोच नहीं सकते, वो बरकतें अल्लाह नस्लों तक अता फरमाएगा। याद रखना, जो उस करीम को राजी करने की फिक्र में रहते हैं और अगर कोई खता हो भी जाए तो इस्तिगफार करके आइंदा के लिए अहद करते हैं, अल्लाह जल्ला शानहु उनकी नस्लों को फाकों से बचाते हैं, उनकी नस्लों को जिल्लतों से बचाते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों को रुसवाई से बचाते हैं, और अल्लाह पाक उनकी नस्लों को 7 को या 14 नस्लों को गैब से रिस्क का इंतजाम फरमा देते हैं। आप अपनी नस्लों के लिए चाहते हैं? क्यों अल्लाह वालों, अपने लिए भी, नस्लों के लिए भी, कि सदा खैर रहे, सदा बरकत रहे, सदा खुशियां रहें, सदा रहमतें रहें, सदा खिजान ना रहे, बहार रहे। चाहते हैं ना, उस करीम की चाहत को तलाश करें और कमली वाले की चाहत को तलाश करें, सरवरे कौनैन सल्लम की चाहत को तलाश में लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी चाहत में लगा रहेगा। तो ठीक है ना। और ये बात जो सुनी है ये अपने घर वालों को सुनाया करें। आप जितने हजरात बैठे हैं ना, आपसे दरखास्त है, अपनी खवातीन को, मेरे दोस्तों हमारी खवातीन भी मोहताज हैं, उनको दर्स में लाया करें, उनको भी लाया करें मेरे दोस्तों। हमारी जितनी ये बहनें हैं, ये सारी के सारी, इनको जरूरत नहीं है क्या? अल्लाह वाले, आप हजरात को अगर जरूरत है तो उनको ज्यादा जरूरत है, वो मुआशरे की मेमार हैं, आपकी नस्लों की मेमार हैं, उनको ज्यादा जरूरत है। और ये बातें बताया करें घर जाके, अपने दोस्तों को बताया करें, अरे उसको समझ आए ना आए, तेरा सबक पक्का हो गया, काम बन गया। जितनों को बताएगा और जितनों किसे ये बातें दोहराएगा, ऐसा मुझे कहने लगे, महीने की तनख्वाह में मैंने टेलीफोन और मोबाइल के कार्ड लेने के लिए बकायदा तनख्वाह में इलाहदा रखता हूँ, हालांकि कम आमदनी वाले शख्स हैं, लेकिन जज्बा उसका बड़ा है। और कहने लगे जो मंगल का दर्श है, हर मंगल का दर्श मैं मुख्तलिफ लोगों को सुनाता हूँ, मैंने ये सुना, मैंने ये सुना, मैंने ये सुना, कहने लगे उनमें से बेशुमार लोग हैं जो नेकी पे आमादा हो गए, नेकी पे आमादा हो गए। मेरे दोस्तों, मोमिन बखील नहीं होता, मोमिन सखी होता है। हम लोगों को भी ये पैगाम पहुंचाएं, ये खैर का पैगाम है, इसमें ना फिरका है, ना मेरे दोस्तों कोई जुबान का मसला है, ना इलाकाई बात है, ये एक ऐसी आलमी बात है जिसको हर शख्स कहेगा बात हक है, हर शख्स दिलो जान से तस्लीम करेगा। तो अपनी खवातीन पे तर्स भी खाएं, उनको भी दर्स पे लाया करें, और घर जाके ये बातें खुद भी, घर वालों को भी और अपने अहबाब को भी बताया करें। एक हफ्ते तक यही सबक दोहराते रहा करें, इतना दोहराएं, इतना दोहराएं कि पक्का हो जाए, और कहने इलाही जुबान पे पक्का हो गया, अब दिल पे तू इसको जमा दे, या अल्लाह इतना मैं कर सकता हूँ, इससे आगे मुझसे ना हो सका, अल्लाह जो मुझसे नहीं हो सकता वो तू ही कर दे। और याद रखना, जो बंदा कर देता है ना, अल्लाह वो कर देता है जो बंदा नहीं कर सकता। ठीक है ना। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब बैठ के फिक्र करेंगे, ये इस ध्यान से करें, इस जी से करें, इस तड़प से करें, अल्लाह जल्ला शानों को तरस आ जाए। एक दफा दोहराएं लफ्ज, लेकिन ऐसे जज्बे से, ऐसे अंदर की कुड़हन से, ऐसे दर्द से, کہ اللہ پاک کو ترس آئے. اور دیکھو میری بات سنو اللہ والو, ہر منگل آ کے, ہر ہفتے آ کے اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف توجہ اور دھیان بڑھانے کی یہاں کر کے جائے, پھر اپنے گھروں میں جو آپ سارا دن ذکر کریں, تلاوت کریں, نماز پڑھیں, یہ مشق اگر یہاں کر کے گئے, یہ چند منٹ کی مشق ہے, یہ آپ کو عبادت میں اپنی زندگی کے ہر نظام میں کام آئے گی. تجربہ کر لو, جو یہاں اللہ جل شانہ کے دھیان کی مشق کرے گا کہ اللہ کے ذکر کو کس کے دھیان سے کرنا ہے, اللہ کے ذکر کو اللہ کے دھیان سے کرنا ہے, اس دھیان کی مشق